इतवार 17 अप्रैल का नमस्कार भारत सुने फैसल मोहम्मद अली से। पश्चिम बंगाल की 56 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग कुछ ही देर में शुरू, जानेंगे वहां का चुनावी गणित। बंगाल दौरे के बीच बीबीसी संवाददाता सलमान रावी पहुंचे इस चायखाने पर।
क्या ये इलायची डाल रहे हैं?
इलायची,
अदरक भी है चाय में कि खाली इलायची?
जो बोलिए सब है, अदरक इलायची सब है।
आपका नाम क्या है?
पंकज तिवारी।
इसी इलाके में ढह गया था एक फ्लाईओवर, 23 लोगों की मौत हो गई थी। एक बातचीत वहां के लोगों से, और पोप ने 3 मुस्लिम शरणार्थी परिवारों को अपनाया, शरणार्थियों से कहा वो अकेले नहीं है।
Questo è il messaggio che oggi desidero lasciarvi. Non perdete la
speranza. सब आगे, लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार मानसी दास से। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के दूसरे चरण में आज 56 विधानसभा सीटों के लिए मतदान हो रहा है। इससे पहले चुनाव के पहले चरण में पहले 18 और फिर 31 सीटों के लिए वोट डाले गए थे। इससे पहले असम विधानसभा चुनावों में 126 सीटों के लिए 2 चरणों में वोटिंग खत्म हो चुकी है। इक्वेडर में समुद्र तट के नजदीक 7.4 तीव्रता का एक शक्तिशाली भूकंप आया है। पैसिफिक सुनामी वार्निंग सेंटर ने कहा है कि भूकंप के कारण समुद्र में ऊंची लहरें उठने की आशंका है, जो तट से टकरा सकती हैं। जापान के दक्षिण पश्चिम में क्यूशू द्वीप पर इस सप्ताह आए 2 शक्तिशाली भूकंप के झटकों के बाद लाखों लोगों ने अस्थायी शिविरों में रात बिताई। भूकंप में 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, जबकि सैकड़ों अन्य घायल हुए हैं। कई लोग पीने के पानी की कमी और बिजली न होने की परेशानी से जूझ रहे हैं। उधर बचावकर्मी मलबे में फंसे लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। परसों आए दूसरे भूकंप की तीव्रता 7.3 मापी गई थी और इसका केंद्र कुमामोटो शहर के नजदीक था। अंग्रेजी के शिक्षक क्रिस टेम्पेस्ट कुमामोटो में अपने घर पर थे जब दूसरा भूकंप आया। वे बताते हैं,
My wife woke me up during the second one. When she woke me up, the room was shaking.
दूसरे झटके के वक्त मेरी पत्नी ने मुझे उठाया, पूरा कमरा कांप रहा था, दाएं बाएं ऊपर नीचे, लग रहा था जैसे रोलर कोस्टर पर हूँ। पिछली रात के भूकंप के अनुभव से हम लोग समय रहते घर से बाहर निकल आए। फिर हम एक कार में बैठ गए और हमने जरूरी सामान की लिस्ट बनाई। मैं सामान लाने अपने घर जा रहा था और भूकंप के आफ्टरशॉक से कारण पूरा घर कांप रहा था। ये थे कुमामोटो में रहने वाले क्रिस टेम्पेस्ट के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। सऊदी अरब ने ओबामा और अमरीकी प्रशासन को चेतावनी दी है कि अगर उन्होंने ऐसा कोई कानून या बिल मंजूर किया जिसके तहत कोई अमरीकी अदालत सऊदी अरब को 9/11 यानी कि 11 सितंबर के हमलों के लिए जिम्मेदार करार दे सकती है, तो सऊदी अरब अमरीका में मौजूद अपने अरबों डॉलर की संपत्ति को बेच देगा। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ओबामा प्रशासन डेमोक्रेट और रिपब्लिकन सांसदों को ये समझाने में लगा है कि वो सदन में इस तरह के बिल को रोकें। ब्राजील में राष्ट्रपति जिल्मा रूसेफ के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर महाभियोग प्रस्ताव पर देश की संसद में वोटिंग से पहले देश में प्रदर्शन हो रहे हैं। राजधानी ब्रासिलिया में सुरक्षा बल प्रदर्शनकारियों के दलों को अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। आशंका जताई जा रही है कि जिल्मा रूसेफ के समर्थक और विपक्ष के दलों में झड़पें हो सकती हैं। महाभियोग प्रस्ताव पर रविवार को वोटिंग होने वाली है। इथियोपिया का कहना है कि दक्षिणी सूडान से सटे उसकी सीमा पर हथियारबंद लोगों ने 140 लोगों को मार दिया है और दर्जनों बच्चों को अगवा कर लिया है। बीबीसी समाचार।
इस वक्त आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी रेडियो की पहली सभा नमस्कार भारत। फैसल मोहम्मद अली और पूरी टीम की तरफ से सुनने वालों को का स्वागत है। इतवार का दिन यूं तो छुट्टियों का होता है और हम सभी कुछ इसी मूड में होते हैं, लेकिन आज पश्चिम बंगाल के 8 जिलों के वोटरों को एक अहम फैसला लेना है। अपने वोट के जरिए कि उनके क्षेत्र में पड़ने वाली 56 विधानसभा सीटों पर उनका प्रतिनिधित्व कौन करेगा। पश्चिम बंगाल की कुल 294 विधानसभा सीटों के लिए 6 चरणों में वोट डाले जा रहे हैं। पहला चरण 4 अप्रैल को था। मतदान कुछ ही देर में 7 बजे से शुरू होगा। फिलहाल हम आपको लिए चल रहे हैं बोलपुर, जहां दुनिया भर में मशहूर शांति निकेतन यूनिवर्सिटी है। रविंद्र संगीत के बोल आप सुन रहे थे। सलमान रवि मौजूद हैं वहां। سلمان، یہ بتائیں کہ روندر ناتھ ٹیگور کی یہ جو دھرتی ہے جہاں وہ یونیورسٹی شانتی نکیتن انہوں نے قائم کیا تھا، کیا مزاج ہے وہاں ووٹنگ کو لے کر، اور کل جو 56 سیٹیں آج ووٹنگ کے لیے جا رہی ہیں ان میں کون کون سے علاقے ہیں؟
دیکھیے، سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے روندر سنگیت کی وہ دھن سنائی، بالکل یہ میں اسی جگہ پر ہوں، وشو بھارتی ہمارے اگلے کاریکرم کا نام ہے، لیکن وشو بھارتی یونیورسٹی کے پاس ہوں میں، بول پور یہ جگہ ہے، اور یہ بنگال کا جو لٹریچر ہے، بنگالی کلچر کا ایک بہت بڑا مرکز، بہت بڑا کیندر ہے، اور روندر سنگیت جیسے کہ آپ نے سنایا کہ گھروں سے آوازیں آتی ہیں، یہاں پر لوگ تیاری کرتے ہیں اس کی، پریکٹس کرتے ہیں روندر سنگیت کی صبح صبح۔ اور جہاں تک چناؤ کا سوال ہے تو بول پور تو تھوڑا شانت ہے کیونکہ یہ کلچر کا مرکز ہے۔ کل ملا کر 56 جو ودھان سبھا کھیتر ہیں وہ خاص طور پر اتری بنگال کے علی پور دوار، جلپائی گڑی، دارجلنگ، اتر دیناجپور، دکشن دیناجپور اور مالدہ، جبکہ جو دکشن بنگال ہے اس کی بیربھوم یہ سیٹ ہے جس کے تحت یہ بول پور اور شانتی نکیتن کا علاقہ آتا ہے، اور اس میں سے 7 ایسی ودھان سبھا کھیتر ہیں جو لیفٹ ونگ ایکسٹریمزم سے یعنی کہ ماؤواد سے پربھاوت ہیں، جس کو لے کر یہاں جو ووٹنگ کا وقت ہے وہ 7 بجے سے لے کر 4 بجے تک کا سیمت کر دیا گیا ہے۔ لیکن اتنی شان جگہ، اتنی کلچر والی جگہ، اور بنگلہ بھاشا کا جو یہ کیندر رہا ہے وہ، لیکن تھوڑا سا اس میں کچھ گڑبڑ یہ آئی ہے کہ چناؤ کے عین وقت پہ یعنی کہ تھوڑا پہلے ہی ایس پی جو ہیں بیربھوم کے، ان کو الیکشن کمیشن نے ہٹایا، 3 انسپیکٹرز کو ہٹایا، اور یہاں پر جو ترنمول کانگریس کے بڑے نیتا ہیں انوبرتا منڈل، ان کے اوپر سرویلنس بٹھا دیا گیا ہے، کیندریہ جو اردھ سینک بل ہے ان کو ان کے گھر پہ تعینات کیا گیا ہے۔ ان کے بھاشنوں کو لے کر کچھ آپتی تھی کیونکہ جس بھاشا کا وہ پریوگ کرتے تھے اپنے بھاشنوں میں، اس پر ان کے خلاف میں یہ کاروائی کی گئی ہے، اور ممتا بینرجی نے اسمبلی میں بھی جب ہنگامہ ہوا انوبرتا منڈل کے بھاشنوں کو لے کر تو انہوں نے کہا تھا کہ ان کی برین میں آکسیجن کی تھوڑا کمی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ اس طرح کی بیان بازی کرتے ہیں۔ اسی پر جو وپکش ہے اس کا کہنا تھا کہ کیندریہ اردھ سینک بل اگر تعینات کر دیے گئے ہیں تو آکسیجن کے سلینڈر بھی سپلائی کیے جانے چاہیے تھے۔ تو
سلمان روی، یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ نے وہاں ووٹنگ شروع ہونے والی ہے، ابھی کچھ دیر ہے، حالانکہ ابھی شاید میرا خیال ہے تقریباً آدھے گھنٹے سے کم ہے، لیکن کچھ ووٹروں سے گفتگو ہو پائی آپ کی، کچھ بات چیت؟
جی، صبح کا وقت ہے اور آہستہ آہستہ لوگ آ رہے ہیں، ابھی چونکہ آج سنڈے کا بھی دن ہے تھوڑا سا ریلیکس ہے، اور بنگالیز آپ جانتے ہیں کہ وہ بالکل آرام سے اپنا کام کرتے ہیں، تو ایسا کچھ بھیڑ بھاڑ نہیں ہے بوتھوں کے پاس، لوگ اطمینان سے نکلیں گے، اور چونکہ یہ یونیورسٹی کا علاقہ ہے تو، لیکن چائے کی دکان ہے یہاں پر جو بیچ بازار ہے بول پور کا، وہاں کچھ لوگوں سے میری بات ہوئی۔
یہ والا ہے بول پور سپر مارکیٹ کا،
سپر مارکیٹ ہے، اور آپ لوگ تیاری کر لیے چناؤ کی؟
ہاں سر۔
تو کتنے بجے ووٹ شروع ہوگا آپ کا؟
7 بجے سے ہوگا۔
7 بجے سے صبح صبح پہلے ڈالیں گے ووٹ؟
ہاں ہاں سر،
سب سے پہلے ڈالیں گے
جی۔
اور آپ تو یہاں چائے بیچ رہی ہیں، آپ کیسے ووٹ ڈالیں گی جا کے؟
10 بجے۔
تو اس بار مزہ آیا ہے چناؤ میں؟
ہاں سر۔
کیسے مزہ آیا بتائیے، خوب بھیڑن ہوا؟
نہیں بھیڑن، یہاں کوئی جھوٹ جھملا نہیں ہوا، یہاں کبھی نہیں ہوا ہے۔
اور یہاں پر آپ کے منڈل صاحب کو سنتے، پولیس ولیس بیٹھا دیا گیا؟
شانتی پور کبھی کوئی الیکشن میں کوئی دقت نہیں ہوا ہے سر، کوئی دقت نہیں ہوا ہے، یا پور سبھا بولیے، لوک سبھا بولیے، ودھان سبھا، یہاں کوئی جھڑ جھملا نہیں ہوتا ہے۔
تو سلمان روی، یہ بتائیں کہ آپ جیسا کہ پہلے ہمیں بتا رہے تھے کچھ نکسلی کھیتر بھی کچھ علاقے پڑتے ہیں، تو اس میں کوئی خاص سرکشا کے انتظام کیے گئے ہیں، اور ووٹنگ کے وقت جو ہے لگ بھگ وہی ہے 7 بجے سے شروع ہو کر شام میں، یا کچھ اس میں تبدیلی ہے؟
جی، 2 گھنٹے پہلے ختم ہوگا، 4 بجے ختم کر دیا جائے گا نکسلی علاقوں میں، چونکہ جو پولنگ پارٹی وہاں گئی ہے ان کو واپس پھر اپنے سینٹرز پہ واپس لوٹنے کے لیے وہ وقت رکھا گیا ہے، کیونکہ سورج تھوڑا جلدی ڈوب جاتا ہے، پوروی بھارت ہے تو سورج جلدی نکلتا ہے یہاں پر، اور یہی وجہ ہے کہ تعیناتی تو پولیس والوں کی کافی کی گئی ہے، کافی ارتھ سینک بل کے جوان یہاں پہ موجود ہیں، پیٹرولنگ ہو رہی ہے، سڑکوں پر سرویلنس ہو رہا ہے، تو یہ تو احتیاطی قدم یہاں پہ اٹھائے جا رہے ہیں۔
یہ ایک سوال اور پوچھنا چاہیں کہ دارجلنگ کا علاقہ، وہ جو گورکھا لینڈ کا کھیتر پڑتا ہے، وہاں بھی آج ہی ووٹنگ ہو رہی ہے، اور گورکھا لینڈ میں ہمیشہ کچھ نہ کچھ اتھل پتھل رہتی ہے، وہاں جو الگ راجیہ کی مانگ ہے ممتا بنرجی کے کاریکال میں بھی ہوئی ہے، وہاں تو وہاں کیا استھتی ہے، وہاں جو آپ گھوم کر رہے ہیں کیا مزاج ہے وہاں لوگوں کا؟
دیکھیے، اس میں بڑا مزدار وہاں پر ڈیولپمنٹ یہ ہے گورکھا لینڈ میں کہ جو گورکھا جنادھیکار مورچہ ہے اس نے اس بار بھارتی جنتا پارٹی کے ساتھ ہاتھ ملایا ہے، اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پچھلی بار ودھان سبھا کا چناؤ ترنمول کانگریس کے ساتھ مل کر لڑا تھا انہوں نے، لیکن گورکھا جنادھیکار مورچہ ایک بڑی فورس ہے پہاڑوں کی، لیکن اس بار ڈگر آسان اس لیے بھی نہیں ہے کیونکہ ان کے بیچ میں سے ہڑکا بہادر چھیتری نے الگ ہو کر اپنی ایک پارٹی بنائی ہے، جن آندولن پارٹی، जिसको GNLF जो सुभाष सिंह का GNLF था उसने अपना सपोर्ट दिया है, और ये कारण जो है जिसकी वजह से, और कमाल की बात यह है कि उनको तृणमूल कांग्रेस का भी सपोर्ट है, तो इस वजह से वहां पर भी मुकाबला काफी रोचक और काफी टफ है इस बार बिमल गुरुंग के लिए जो GJM के अध्यक्ष हैं। अब देखना होगा कि पहाड़ का रुख किस तरफ, हवाएं पहाड़ की बहती हैं वहां, और कहां किस तरह से वो अपनी जो साख है वो बचाए रख पाते हैं गोरखा जनाधिकार मोर्चा की बिमल गुरुंग।
सलमान रावी, आप पहाड़ों पर किस रुख में हवा बह रही है उस पर नज़र बना रखिए, और बाकी जो पश्चिम बंगाल का उत्तरी इलाका है उस पर भी नज़र बना रखिए। हम अगले कार्यक्रम में फिर आपके पास आते हैं। इस वक्त हम आपको लिए चलते हैं कलकत्ता की तरफ, जहां चुनाव अभी फ़िलहाल कुछ दिन के बाद होंगे, लेकिन पिछले माह वहाँ एक बड़ा हादसा हुआ। 31 मार्च को बड़ा बाज़ार के इलाके में एक फ्लाईओवर जो तैयार हो रहा था वो गिर गया और 23 लोगों की मौत हो गई। इसने वहाँ की राजनीति को भी गरमा दी है। इस इलाके की एक चाय दुकान पर, जैसा कि हमने कुछ देर पहले आपको सुनवाया था, सलमान रावी गए, वो तो गए थे वहां चाय की चुस्कियां लेने, लेकिन फिर कुछ लोगों से बातचीत होने लगी और उन्होंने बातचीत के कुछ अंश हमें वहां से भेजे हैं।
बुढ़ा जोर से
क्या ये इलायची डाल रहे
हैं? इलायची,
अदरक भी है चाय में कि खाली इलायची?
जो बोलिए सब है, अदरक इलायची सब है।
आपका नाम क्या है?
पंकज तिवारी।
मैं इस वक्त विवेकानंद रोड पर पंकज की दुकान पर हूँ चाय की, और यहाँ कुछ जो लोकल लोग हैं वो मेरे साथ खड़े हैं। ये वही जगह है जहाँ पर वो पुल नीचे गिरा था, जिसको लेकर काफी सियासत गर्मा गई है। और आप लोग यहाँ के लोकल लोग हैं?
यही कलकत्ते के रहने वाले,
इसी मोहल्ले के रहने वाले। क्या वाकई में ये पुल जो है ये बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है पॉलिटिक्स का, क्योंकि मोदी जी ने आया कहा कि ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं, एक्ट ऑफ फ्रॉड है बोलते हैं।
कोर्ट में ऑर्डर भी चला था
जी,
ऑब्जेक्शन किया गया था कि ये ब्रिज नहीं बनेगा, यदि पुलिस चाहती तो पोस्टा का जो काम आज से एक साल पहले क्लियर कर दिया गया था डानकुनी जाने के लिए, यदि वो डानकुनी चल जाता तो ये ब्रिज नहीं बनता। ये सब पुलिस का चाल, यहाँ का राजनीति का चाल है। जो ब्रिज का 6 महीने का समय था वो 1 महीना तैयार करने वाला था, इसके लिए ब्रिज गिरा गया।
लेकिन ये तो ब्रिज को देखता हूँ मैं, लोगों के घरों में घुस गया, बालकनियों में,
इसके लिए तो ऑब्जेक्शन किया गया था।
एक मकान से सिर्फ 6 इंच की दूरी है।
फिर भी आपको नहीं मालूम है डेड बॉडी वहाँ कितना पड़ा हुआ है?
पूरा मलबा पड़ा हुआ है,
मलबा पड़ा, उसके डेड बॉडी है।
तो निकाल क्यों नहीं रहे हैं?
क्यों निकालेगा, निकालेगा ब्रिज गिर जाएगा। वो एक साइड काट रहा है, इस साइड काटने दिए ना।
तो ये पुल किसने बनाना शुरू किया था?
ये CPM गवर्नमेंट ने किया।
अच्छा, CPM। तो ये ममता बनर्जी गलत नहीं कह रही है कि ये पुराना है?
नहीं, गलत तो कह रही हैं, सरकार तो आती रहती जाती रहती है। आज सरकार TMC की है, कल BJP की आएगी, कल और कांग्रेस की आएगी, तो क्या सर जो ब्रिज तो जिसका बना हो उसके उसी का नाम थोड़ी चलेगा। ब्रिज बन जाता और उसका उद्घाटन करती तो ममता बनर्जी करती ना उद्घाटन, तो फिर
2 महीना पहले
बोलते रहा कि हम
यहाँ पे आके बोल के गए कि हम इनका उद्घाटन करेंगे 2 महीना के अंदर।
हाँ, सुने जी।
और उसके बाद जिस दिन ब्रिज गिरा फिर उस दिन आके बोले ये ब्लैकलिस्टेड कंपनी है। तो आप लोगों ने कोई जांच नहीं किया क्या? अगर ये 2009 में अगर आप इसका परमिशन दिया गया है ब्रह्मफंड सरकार में, तो 2011 में TMC सरकार आई हुई है, तो आज 2016, ये 4 सालों में TMC सरकार ने क्या जाँच एक बार भी जाँच नहीं किया कि इनलीगल प्रोसेस बन रहा है कि इसमें क्या मटेरियल दिया जा रहा है? परसों दिन भी 2 बॉडी निकले अपने आंखों के सामने,
इसका 5 से 6 बार उद्घाटन हुआ है आज तक।
ये तो बिल्कुल अद्भुत है, क्योंकि पहली बार देख रहा हूँ कि कोई पुल किसी के मकान के अंदर घुसा हुआ
है। ब्रिज और भी बनी हुई है, ऐसी बात नहीं है कि ब्रिज यहीं पर बनी है, और भी है, लेकिन वो है कमर्शियल इलाका था और वहाँ पर स्पेस है काफी साइड में, यहाँ तो साइड में फैक्ट्री। अब यहाँ के लोग, अब यहाँ की पार्टी, यहाँ की सरकार बोलती है कि ये मकान इलीगल है, इन मकानों को बोला है कि आप अपना आपका प्लान दीजिए। मकान के ऊपर में क्लेम कर रहा है यहाँ की गवर्नमेंट, 360 आदमी हॉस्पिटल में भर्ती हैं, वो कहाँ गए 9 साल से? हाँ,
ये ऐसा संभव है क्या इस तरीके से एक रेजिडेंशियल एरिया में आपने एक खुलेआम ऐसा एक ब्रिज को एक्सटेंशन कर दिया और काम भी चालू है? बोला गया था कि हम एनी हाउ विधानसभा के चुनाव के पहले पहले इसको कम्प्लीटली कर देंगे, ठीक है, अच्छी बात।
आने के बाद में 7 बार एक्सटेंशन मिला इसको, 7 टाइम्स एक्सटेंशन मिला,
तो यही बात है।
ये थे बड़ा बाजार के कुछ लोग जिनसे बात कर रहे थे सलमान रावी।
खबर सच है अगर BBC पर है।
और अब रुख करते हैं पश्चिम बंगाल से भारत प्रशासित कश्मीर की तरफ, जहां पिछले हफ्ते भर से उथल पथल मची हुई है। कल एक और नया मोड़ आ गया वहां, जिस वक्त जिस लड़की के साथ कथित छेड़छाड़ हुई थी उसकी मां ने यह बयान दिया कि सेना ने उनकी बेटी से जो का जो वीडियो जारी किया है वो सही नहीं है और वो एक दबाव में दिया गया है। इस वीडियो में लड़की ने कहा था कि उसके साथ कुछ स्थानीय लड़कों ने छेड़छाड़ की थी, जबकि पहले उसने फौज पर ये इल्ज़ाम लगाया था। लड़की को पुलिस की निगरानी में रखे जाने पर भी सवाल उठ रहे हैं। हमारे सहयोगी संदीप सोनी ने श्रीनगर में बीबीसी संवाददाता रियाज मसरूर से बात की और सबसे पहले पूछा कि इस वक्त घाटी में किस तरह की फिजा है।
छह दिन की जो आपने बात की उसमें कल का दिन कहना चाहिए कि शांतिपूर्वक इस वजह से गया कि कल कोई मौत नहीं हुई। हालांकि प्रदर्शन बहुत जगहों पे हुए और एक जगह पुलिस चौकी को भी जलाया गया, लेकिन कुल मिलाकर जो है शांति ही रही और कल देर रात तक भी किसी अलगाववादी गुट ने बंद का आह्वान नहीं किया था।
ये बताएं कि कथित छेड़छाड़ के मामले में जिस तरह के बयान सामने आ रहे हैं उसमें अब पुलिस पर कार्रवाई के लिए कितना दबाव बढ़ गया है?
कई लोगों ने ये सवाल उठाया कि पुलिस ने एक नाबालिग छात्रा को पुलिस थाने में ले जाकर उसका बयान रिकॉर्ड क्यों कराया, लेकिन कल ये मामला अदालत में पहुंचा और अदालत में एक रिट पिटीशन को एडमिट किया कोर्ट ने, जो कुछ लॉयर्स ने किया था, और अदालत ने अब पुलिस से जवाब तलब किया है और कहा है कि भाई किस कानून के तहत आपने एक नाबालिग लड़की को पुलिस में रखा और उससे जब उसकी माँ और उसकी मौसी मिलने गई तो उसको भी वहीं पे रखा, उसके पिता को भी वहीं पे रखा है। तो उनकी माँ जो है वो कल श्रीनगर में नमूदार हुई और वो कुछ लॉयर्स के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहती थी जिसकी पुलिस ने अनुमति नहीं दी, लेकिन जाते जाते उन्होंने ये कहा कि जो बयान वीडियो फिल्म में था उस लड़की का वो दबाव में दिया गया था। तो अब कुल मिलाकर पुलिस की क्रेडिबिलिटी पे संदेह किया जा रहा है और पुलिस पर न सिर्फ मानव अधिकार संगठनों का दबाव है, अलगाववादियों का दबाव है और सबसे बड़ी बात यह है कि अब न्यायालय ने इसमें जो है कड़ा रुख अपनाया है और पुलिस से जवाब तलब किया है।
एक बात और हम देख रहे हैं कि महबूबा मुफ्ती जब से मुख्यमंत्री बनी है घाटी में तनाव की स्थिति रही है, पहले NIT का मामला और अब कथित छेड़छाड़ के बाद पैदा हुए हालात। ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री पर कितना दबाव है और प्रशासन का कामकाज कैसे चल रहा है?
जी बिल्कुल, ये तो एक PR क्राइसिस के तौर पे देखा जा रहा है, क्योंकि जब उन्होंने 4 अप्रैल को पदभार संभाला तो 3 अप्रैल से ही NIT का विवाद छिड़ा हुआ था और उसके बाद एक हफ्ते तक वो विवाद छाया रहा। उस दौरान में उन्हें दिल्ली भी जाना था, प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात तय थी, जो कि उन्होंने किया, लेकिन उसका ज्यादा असर ग्राउंड पे नहीं पड़ा क्योंकि कश्मीर में जो है हालात अस्थिरता की तरफ जा रहे थे। तो इस बीच में जब 12 अप्रैल को ये कथित छेड़छाड़ का मामला सामने आया तो तब से पूरी घाटी में हालात अस्त व्यस्त हो गए और पूरा जनजीवन ठप है। और जिस तरह से उन्होंने कहा था कि उन्होंने भाजपा के साथ अलायंस करके एक कड़वी गोली निगल ली है इस आशा के साथ कि वो राज्य में एक विकास और डेवलपमेंट का एक नया दौर शुरू करेंगे, उसकी तरफ अभी तक कोई इशारा नहीं गया है। उन पर एक तो अपनी इमेज को बिल्ड करने का चैलेंज है और दूसरी तरफ जो कुछ भी पुलिस या सेना की तरफ से हो रहा है या उस पर इन दोनों फोर्सेस पर जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं तो उनको भी किस तरह से वो हैंडल करेंगी, ये देखने वाली बात होगी।
ये थे BBC संवाददाता श्रीनगर से रियाज मसरूर, उनसे बात की थी संदीप सोनी ने। और पाकिस्तान के अखबारों में जाहिर है कि कश्मीर सुर्खियों में है। उर्दू अखबारों की समीक्षा तैयार की है अशोक कुमार ने, उसे सुना रहे हैं पंकज प्रियदर्शी।
तुर्की के शहर इस्तांबुल में इस्लामिक सहयोग संगठन की बैठक में कश्मीर का मुद्दा उठने पर पाकिस्तानी उर्दू मीडिया में काफी कुछ लिखा जा रहा है। नवाए वक्त लिखता है कि IOC के महासचिव इयाद अमीन मदनी ने अपनी सालाना रिपोर्ट में कश्मीर समस्या का खास तौर से जिक्र किया। अखबार के मुताबिक IOC महासचिव ने कहा कि जिन मुस्लिम देशों के भारत के साथ अच्छे रिश्ते हैं वो भारत पर जोर देंगे कि जम्मू कश्मीर में मानवाधिकारों का सम्मान करे और संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों के मुताबिक कश्मीरियों को स्वनिर्धारण का अधिकार दे। लेकिन अखबार सवाल करता है कि जब सऊदी अरब भारत के साथ रक्षा समझौते करेगा और मोदी को अपना सबसे बड़ा नागरिक सम्मान देगा तो फिर वो भला कश्मीरियों को उनका हक देने की राह पर क्यों आएगा। एक्सप्रेस ने IOC सम्मेलन में सऊदी शाह सलमान के इस बयान का जिक्र किया है कि हम इस्लामिक दुनिया की समस्या का हल निकालने की मांग करते हैं और इसमें कश्मीर और फलस्तीनी समस्या का न्यायोचित ढंग से हल निकालना सबसे जरूरी है। लेकिन अखबार की राय है कि मुस्लिम देश अपने सभी संसाधनों और मानव शक्ति के बावजूद घरेलू मोर्चे पर पैदा होने वाली समस्याओं का हल निकालने में नाकाम दिखाई दे रहे हैं। اخبار کہتا ہے کہ سیریا، لیبیا، یمن، عراق اور فلسطین کی سمسیاؤں کو حل کرنے کے معاملے پر مسلمان دیش کہیں بھی ایک جٹ نظر نہیں آ رہے ہیں۔ انصاف لکھتا ہے کہ یہ پہلا موقع ہے جب آئی او سی نے کشمیریوں کے ادھیکاروں پر کھل کر آواز اٹھائی ہے۔ اخبار کہتا ہے کہ بدقسمتی سے پاکستانی اور دوسرے مسلم دیشوں کے شاسک اپنے اپنے فائدے کی سوچتے ہیں اور عیش پرستی کا شکار ہیں، جبکہ ان دیشوں کی جنتا کشمیریوں کے حق کے لیے آئے دن آواز بلند کرتی رہتی ہے اور پردرشن کرتی رہی ہے۔ وہیں جنگ کے ایک سمپادکیے کا شیرشک ہے، بھارتی اور افغان خفیہ ایجنسیوں کا گٹھ جوڑ۔ اخبار کا کہنا ہے کہ بھارت کا اس وقت سب سے بڑا مقصد پاکستان چین آرتھک کوریڈور یوجنا کو ناکام کرنا ہے، اور اس سلسلے میں را کے ہیڈ کوارٹر میں وشیش سیل قائم کی جا چکی ہے۔ اخبار کہتا ہے کہ بھارت اور افغان ایجنسیوں کی ایک کے بعد ایک ایک کر حالیہ سرگرمیاں ان کے بیچ گٹھ جوڑ کے ثبوت پیش کرتی ہیں۔ وہیں روزنامہ دنیا میں پاکستانی سینا پرمکھ راحیل شریف کا یہ بیان ہے کہ کسی کو بھی پاکستان کی ترقی میں روڑا اٹکانے نہیں دیں گے۔ اخبار کے مطابق آرمی چیف کا یہ کہنا صحیح ہے کہ دیش ویرودھی طاقتیں پاکستان کو استھر کرنے میں لگی ہیں، لیکن سرکار کی اور سے ایسی باتیں کہیں تک نہیں جاتی، قدم اٹھانے کی باری تو اس کے بعد آتی ہے۔ اخبار نے سرکار پر پوری طرح سے نشکریہ ہونے کا آروپ لگاتے ہوئے کہا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ سرکار کا کوئی وجود ہی نہیں ہے اور ساری ذمہ داری فوج کے کندھے پر ڈال دی گئی ہے۔ رخ بھارت کا کرے تو روزنامہ صحافت نے پردھان منتری نریندر مودی کو سعودی عرب کا سروچ ناگرک سمان اچانک دیے جانے پر حیرانی جتائی ہے۔ اخبار کہتا ہے کہ کیا سعودی عرب کے شاسک اس بات سے بے خبر ہیں کہ جب مودی گجرات کے مکھیہ منتری تھے تو 2002 میں وہاں مسلمانوں کا قتل عام ہوا تھا اور وہاں کی مودی سرکار نے مسلمانوں کو بچانے کی کوشش بھی نہیں کی تھی۔ وہیں راشٹریہ سہارا نے بھارت اور امریکہ کے بیچ ہوئے ایک حالیہ سمجھوتے کو خطرناک بتایا ہے، جس کے تحت امریکہ کو رکشا ادیشیوں کے لیے بھارتی
ایک طرف آئی پی ایل میچوں کے لیے پانی سے تربتر میدان، دوسری طرف پانی کے لیے ترستے گاؤں دیہات۔
کہاں آوت ہے پانی، مرتی ہیں گورو بچیرو مڑائی سب کو بھیا ہرا کہے کا۔
سوکھی زمین، پتھرائی آنکھوں میں بچوں کے بکھرتے سپنے۔
ہمارے سب سے بچے جاتے ہوں گے اسکول بہت کم جاتے ہیں اور زیادہ پانی میں، اور اب گھر کے کام دکھ رہے ہیں کیونکہ نہیں ماں چلے گا دلی، کیونکہ یہاں کچھ کھانے کے لیے ہے نہیں، سرکار کچھ کر نہیں رہی ہے مدد۔
پانی نہیں بچا، بچے رہے تجربے۔
پہلے جو ہے تو لوگ پانی کا رکھ رکھاؤ کرتے تھے، بنیاں ڈالتے تھے، اب آج برساتی پانی کوئی روک نہیں پا رہا،
اور اب چاروں طرف سوکھا ہی سوکھا۔
آسوں کی سال ماں کئی آدمی نے بلکٹ کے لانے کھیتی لئی، اب بھاؤ نہ کچھ تو سویرے سے چلاتا کہی کہ ہم تو آتم ہتیا کر لے بے۔
سوکھا بھارت، سوموار 18 اپریل سے شام 7:30 بجے دن بھر میں، پنہ پرسارن اگلی صبح 6:30 بجے نمسکار بھارت میں۔ سوکھا بھارت۔
اور اب رخ کرتے ہیں یورپ کی طرف۔ ایک طرف جہاں گرہ یدھ سے گرست سیریا اور دوسرے ملکوں سے شرنارتھیوں کا یورپ جانا جاری ہے اور ان کی بڑھتی سنکھیا کو لے کر یورپ پریشان ہے، ان سے نپٹنے کے راستے تلاش رہا ہے، وہیں کیتھولک چرچ کے پرمکھ پوپ فرانسس دنیا کو پرواسیوں کو اپنانے کا سندیش دے رہے ہیں۔ پوپ نے کل 3 پرواسی پریواروں کو اپنایا، شرنارتھی پریواروں کو معاف کیجیے گا، وہ گریس گئے تھے اور اپنے ساتھ ان پریواروں کو لے کر ویٹیکن نکلے لوٹے۔ اس سال کی اگر رپورٹ جانے تو سنیکت راشٹر کے مطابق 135,000 سے ادھک لوگ شرنارتھیوں کے طور پر یورپ پہنچے ہیں۔ پوری رپورٹ مانسی داش سے۔
پوپ فرانسس کے ساتھ گریس سے روم آئے 12 سیریائی پرواسیوں کے پریواروں کا تالیوں سے سواگت ہوا۔ پوپ گریس کے لاسبوس دویپ پر ستھت پرواسیوں کے ایک موریا راحت شیویر میں گئے تھے، جہاں سے وہ اپنے ساتھ پرواسیوں کے 3 پریواروں کو لے کر آئے تھے۔ یہ تینوں پریوار مسلمان ہیں اور فی الحال ان کی دیکھ ریکھ ایک عیسائی چیریٹی سنستھا سینٹی ایگیڈیو کر رہی ہے۔ سنستھا کے ایک سدسیہ ماریو مارازٹی نے بی بی سی کو بتایا ان پریواروں کو مانویہ آدھار پر ویزا دیے گئے ہیں۔ انہوں نے بتایا پوپ نے ان میں سے ہر ویکتی کی کہانی سنی اور ان کی پرتکریا بھی تورت تھی، لیکن یہ کچھ ایسا نہیں تھا جو وہاں پر گھٹ گیا۔ پوپ اس کے بارے میں پہلے ہی فیصلہ لے چکے تھے اور اس کی سمبھاوناؤں پر وچار کر رہے تھے۔ میرے پاس زیادہ جانکاری نہیں ہے، لیکن میں یہ بتا سکتا ہوں کہ یہ سب اچانک نہیں ہوا۔ ये थे ईसाई चैरिटी संस्था सेंटी इगिडियो के सदस्य मारियो माराजिट्टी के शब्द। पोप मोरिया राहत शिविर गए थे, जहां से यूरोपीय यूनियन और तुर्की के बीच प्रवासियों के यूरोप आने की संख्या कम करने संबंधी समझौते के बाद 3,000 से ज्यादा प्रवासी अपने तुर्की निर्वासित किए जाने का इंतजार कर रहे हैं। वेटिकन का कहना है कि जो लोग पोप के साथ आए हैं वे इस समझौते से पहले ही लेस्बोस के राहत शिविर में रह रहे थे। शिविर में दिए स्पीच में पोप ने अपील की थी कि यूरोप शरणार्थियों के दुख पर आंखें न मूंदे।
Questo è il messaggio che oggi desidero lasciarvi. Non perdete la speranza.
मैं आपके लिए आज यह संदेश छोड़कर जाना चाहता हूं कि उम्मीद का दामन ना छोड़ें। हम ईसाई अच्छे लोगों की बात करना पसंद करते हैं, ऐसे लोग जो सड़क पर किसी जरूरतमंद को देखकर मदद करने के लिए रुकते हैं। हमारे लिए यह ईश्वर की कृपा है जो सभी के लिए है। यह हमें ये भी सिखाता है कि जरूरतमंदों की मदद करें। ईश्वर करे कि मेरे इस महाद्वीप पर मेरे भाई बहन अच्छे लोगों की तरह आपकी मदद करने के लिए आगे आए। ये थे पोप फ्रांसिस के शब्द। ग्रीस के प्रधानमंत्री अलेक्सिस सिप्रास ने पोप से मुलाकात कर कहा कि उनका यह कदम ग्रीस और यूरोपीय यूनियन की सीमा से दूर लोगों तक जाएगा। लेकिन क्या पोप के इस कदम से सीरिया में गृह युद्ध की स्थिति से भाग रहे लोगों को यूरोपीय देश स्वीकार करेंगे? क्या राहत शिविरों में रह रहे लोगों के लिए परिस्थितियां वाकई बदलेंगी?
शरणार्थी संकट रिपोर्ट सुना रही थी मानसी डाश। और अब खेल समाचारों के साथ आदेश कुमार गुप्त।
खेल समाचारों के साथ मैं हूं आदेश कुमार गुप्त। 5 बार की चैंपियन रही भारतीय हॉकी टीम कल सुल्तान अजलान शाह कप हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में विश्व चैंपियन ऑस्ट्रेलिया के सामने टिक नहीं सकी और वो एक तरफा रूप से 4-0 से हारी और इसके साथ ही छठी बार अजलान शाह कप का सुल्तान बनने का उसका सपना टूट गया। भारतीय खिलाड़ियों ने ऑस्ट्रेलिया को जैसे तैसे खेल के 25 मिनट तक रोके रखा, लेकिन जैसे ही क्रेग थॉमस ने पहला गोल दागा उसके बाद भारतीय टीम बिखर गई। क्रेग थॉमस ने खेल के 35वें मिनट में दूसरा गोल भी किया। इसके बाद खेल के 43वें और 57वें मिनट में ऑस्ट्रेलिया के मैट गॉड्स ने गोल कर रही सही कसर भी पूरी कर दी। इसके अलावा न्यूजीलैंड ने मेजबान मलेशिया को पेनल्टी शूटआउट में 5-4 से हरा कर तीसरा स्थान हासिल किया। उधर आईपीएल 9 में कल 2 मुकाबले खेले गए, जहां पहले मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को उसी के मैदान में 8 विकेट से मात दी। कोलकाता के सामने जीत के लिए 143 रनों का लक्ष्य था, जो उसने कप्तान गौतम गंभीर के नाबाद 90 और उनके जोड़ीदार रोबिन उथप्पा के 38 रनों की मदद से 18.2 ओवर में केवल 2 विकेट खोकर हासिल कर लिया। गंभीर ने केवल 60 गेंदों पर 13 चौके और 1 छक्के की मदद से निर्णायक 90 रनों की पारी खेली। इससे पहले टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए हैदराबाद की टीम निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 142 रन बना सकी। हैदराबाद के इयान मॉर्गन ने सबसे अधिक 51 रन बनाए। वहीं कल गुजरात लायंस ने बेहद कश्मकश भरे दूसरे मुकाबले में मुंबई इंडियंस को उसी के मैदान वानखेड़े स्टेडियम में 3 विकेट से मात दी। आखिरी ओवर में गुजरात को जीत के लिए 11 रनों की जरूरत थी, जिसे आरोन फिंच और धवल कुलकर्णी ने बखूबी पूरा किया। वैसे गुजरात के सामने जीत के लिए 144 रनों का लक्ष्य था, जो उसने पूरे 20 ओवर में 7 विकेट खोकर हासिल किया। आरोन फिंच 67 रन बनाकर नाबाद रहे। इससे पहले मुंबई इंडियंस ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 143 रन बनाए। आज आईपीएल में किंग्स इलेवन पंजाब का सामना राइजिंग पुणे सुपर जायंट से और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का सामना दिल्ली डेयर डेविल से होगा।
और एक बार फिर से सुनिए दुनिया भर की अहम खबरें मानसी दाश से।
बीबीसी समाचार। इक्वाडोर के समुद्र तट के नजदीक एक शक्तिशाली भूकंप आया है। पहले यह बताया गया था कि इसकी तीव्रता 7.4 है, लेकिन ताजा रिपोर्ट के अनुसार इसकी तीव्रता 7.8 बताई जा रही है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के दूसरे चरण में आज 56 विधानसभा सीटों के लिए मतदान हो रहा है। आज से दुनिया के 150 देश पोलियो को पूरी तरह से खत्म करने के लिए पोलियो के एक अन्य तरह के टीके का इस्तेमाल करना शुरू करेंगे। हालांकि पोलियो का हाल के वर्षों में काफी कम मामले दर्ज किए गए हैं, लेकिन विश्व के स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि यदि इस पर जोर ना दिया गया तो पोलियो फिर से फैल सकता है। बीबीसी समाचार।
इस कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाला था अजीत सारथी ने। हमारे कार्यक्रम आप bbchindi.com पर भी सुन सकते हैं। आप हमें ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।